जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातः काल और संध्या के समय आचमन करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है, जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर में पुष्कर में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं और वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं और पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर देता है। महर्षि अगस्त्य के द्वारा राजा श्वेत के उद्धार की कथा। पलस्य जी कहते हैं, तदंतर देवता लोग अपने बहुत से विमान के साथ वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के तपोवन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। फिर रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनियों में श्रेष्ठ वैसे अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके उनके समीप गए। श्री राम बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ, आपके प्रणाम के लिए और सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि मेरे ऊपर डालिए। इतना कहकर बारंबार मुनि के चरण में प्रणाम कर भगवान राम वहां पर खड़े हुए। भगवान राम ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, क्या आप और आपके शिष्य कुशल हैं? इस वन में आपको कोई उपद्रव नहीं है? अगस्त्य जी बोले, हे रघुश्रेष्ठ, आपका मैं स्वागत करता हूँ। हे जगत वंदन सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित बहुत ही पवित्र हो गया हूँ। आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, जिसका स्वीकार करें। आप अपने उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान के पात्र हैं। मेरे हृदय में आप ही सदा विराजमान रहते हैं, अतः मेरे आप परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जीवन दिया है। हे भगवान, आज रात को आप यहाँ हमारे पास रहिए। हे महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्यापुर को लौट जाइए। हे सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। यह दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप से तेज से जगमगा रहा है। हे राजेंद्र, आप इसका स्वीकार करके मेरे प्रिय बने, क्योंकि प्राप्त की हुई वस्तुओं का पुनर्दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह आप मुझे बताएं। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है, फिर मैं आपसे दान क्यों लूं? इससे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगस्त्य जी बोले, हे श्री राम, प्राचीन सत्ययुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही हुआ करते थे तथा समस्त प्रजा राजा से हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा को प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए एक राजा को नियत कीजिए, जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके तथा देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त तब देवताओं ने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ पर एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की प्राप्ति हुई। लोकपालों के उस अंश का ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए एकत्रित किया, उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित और साधन में कुशल था। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत करता था, वरुण के अंश से समस्त देहदारियों का पोषण करता था, कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता था, तथा राजाओं में जो यमराज का अंश है उससे उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता था। हे रघुश्रेष्ठ, इस इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं, इसलिए हे प्रभो, मेरा उद्धार करके यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, हे राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य के हाथ से वह दिव्य आभूषण लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वह निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे, ऐसे रत्न को तो मैंने विभूषण की लंका में भी नहीं देखा है। इस प्रकार मन ही मन सोचकर रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना प्रारंभ किया। श्री रामचंद्र जी बोले, हे ब्रह्मन, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी वह अलभ्य है। आपको यह कैसे और कहाँ से प्राप्त हुआ तथा इस प्रकार के आभूषण को किसने बनाया? कृपया मुझे इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। अगस्त्य जी बोले, हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में बहुत ही एक विशाल वन यहाँ पे था। इसका व्यास 100 योजन था, किंतु उसमें कोई पशु नहीं रहता था, नहीं पक्षी। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, तालाब था, जो हंस तथा कारंड आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े ही आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक बड़ा ही बहुत सुंदर आश्रम था, जो बहुत ही पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई दे रहा था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था, न कोई जीव वहां पे रहते थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात्रि वहां पे व्यतीत की। सुबह सवेरे मैंने उठकर वहां पे तालाब की ओर गया, तो रास्ते में मुझे एक बहुत ही बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत रुष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था कि वह कुछ तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है? यह लाश किसकी है? इसकी मृत्यु कैसे हुई और यह वन में कैसे आया? इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़े खड़े वैसा सोच ही रहा था कि उतने में आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता हुआ दिखाई पड़ा। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली विमान था। एक ही क्षण में विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा, उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और सरोवर में स्नान करके उस मुर्दे का मांस खाने की इच्छा से वो मुर्दे के पास गया और वो मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर से सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहार कर वह शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते हुए देखकर मैंने कहा, स्वर्ग लोक के निवासी हे महाभाग, तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवताओं के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही द्रोणित है। हे सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? हे रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवर, मेरा जैसा वृत्तांत है वह आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिताजी राज करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक थे। उनकी दो स्त्रियां थी। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम था सूरत। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहाँ पूर्ण सावधानी से राज्य का संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते हुए मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हुआ और मैं मरण पर्यंत तपस्या का मैंने निश्चय किया और मैं तपोवन की ओर चल पड़ा। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सुरथ का अभिषेक किया। फिर उस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमयी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पर पहुंचने पर मुझे बहुत ही अधिक भूख और प्यास सताने लगी। मेरी इंद्रियां तलमल होने लगी। मैंने त्रिलोक के श्रेष्ठ देवता जी ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यहाँ पर मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि मुझे ये भूख और प्यास की प्राप्त हुई है और यह भूख और प्यास मेरा पिंड नहीं छोड़ती। हे देव, शीघ्र ही बताइए मुझे क्या आहार करना होगा। महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर कर सोचने के बाद मुझे कहा, हे तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भीख मंगे को भी कभी भी भीख नहीं दी। जब तुम राज्य भवन में राज्य का पालन कर रहे थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे हाथ किसी अतिथि को भोजन सत्कार नहीं मिला, इसलिए यहाँ रहते पर भी आपको भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। हे राजेंद्र, भांति भांति के आहारों में जिसको तुमने भी भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है, उसी का मांस खाओ और उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, हे प्रभो, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी फिर मेरे लिए कोई आहार नहीं रह पाएगा जिससे इस शरीर के भूख की तृप्ति हो सके। जो कभी चुकाने वाला न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपया कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस का भोजन करते हुए मुझे 100 वर्ष बीत जाएंगे। उसी समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य जी पधारेंगे। उनके आने से तुम इस संकट से छूट जाओगे। हे राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाने के की में क्या विशेष बात रही होगी उनके लिए? भगवान श्री ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैंने अपने शरीर के मांस को घृणित भोजन करने लगा। हे विप्रवर, यह कभी भी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए 100 वर्ष मैंने यहाँ पर बिताए हैं। हे ब्राह्मण, अब अगस्त्य जी मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल ही निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर उनसे उनके उस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पर आ पहुंचा हूँ। अब निसंदेह मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की भांति पृथ्वी पर लौट गए। यह देखकर मैंने उनको उठा दिया, बताओ तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, हे ब्राह्मण, इस घृणित आहार से और जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार कर आप मुझ पर कृपा करें। हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी कहानी सुनकर और उसके उद्धार की दृष्टि से यह दान मैंने स्वीकार किया था, लोभवश नहीं। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय वह श्वेत राजा का मुर्दा शरीर वहां से अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वह राजर्षि बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण भेंट दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हुए थे।